हरे कृष्णा।
तो आप सबका स्वागत है भागवतम कक्षा में।
आज का श्लोक है छठवां स्कंद है 18वां अध्याय और 47वां श्लोक।
तो ये वर्ष है और छठवां स्कंद 18वां अध्याय 47वां वर्ष। आप मेरे बाद रिपीट करिए। श्री कश्यप उवाच न हिंसात भूत जातानी न सपेन अनृतम वदेत न छिंदन नखरोमानी न स्पृशेद अमंगलम। श्री कश्यप उवाच न हिंस्यात भूत जातानी न सपेन अनृतम वदेत न छिंदन्य नखरोमानी न स्पृशेत अमंगलम। श्री कश्यप उवाच न हिंस्यात भूत जातानी न सपेन अनृतम वदेत न छिंदन्य नखरोमानी न स्पृशेत अमंगलम।
शब्दार्थ अनुवाद अर्थात पर ऐसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की कृपया मेरे पीछे दोहराइए।
श्री कश्यप उवाच कश्यप मुनि ने कहा न हिंस्यात हिंसा न करें भूत जातानी जीवात्माओं की न शपेत न साप दें ना नहीं अनृतम झूठ बदेत बोले ना छिंद्यात ना काटे नखरोमानी ना खून तथा रोए ना स्पृशेत स्पर्श ना करे यत जो अमंगलम अशुभ। अनुवाद कृपया पीछे दोहराइए। कश्यप मुनि ने कहा हे प्रिय इस व्रत का पालन करते समय न तो उग्र बनो न ही किसी को कष्ट पहुंचाओ न तो किसी को साप दो न असत्य भाषण करो न तो अपने नाखून तथा बाल को काटो और न हड्डियों खोपड़ी जैसी अशुद्ध वस्तुओं का स्पर्श करो। तात्पर्य कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को जो पहला उपदेश दिया था किसी से द्वेष न करना वह था किसी से द्वेष न करना। इस संसार में सबों में द्वेष करने की प्रवृत्ति पाई जाती है अतः कृष्ण भक्त बनने के लिए इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना चाहिए जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है परमो निर्मत सराणाम। कृष्ण भक्त सदैव द्वेष रहित होता है जबकि अन्य लोग द्वेषमय। अतः कश्यप मुनि द्वारा अपनी पत्नी को यह उपदेश देना कि वह द्वेष रहित हो सूचित करता है कि कृष्ण भक्ति को बढ़ाने की दिशा में यह पहली अवस्था है। कश्यप मुनि अपनी पत्नी को कृष्ण भक्त बनाना चाहते थे जिससे उसकी तथा इंद्र की दोनों की रक्षा हो सके। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है भागवत कक्षा में। आज उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये रीकैप करेंगे स्टोरी को कि जो ये प्रसंग चल रहा है। कश्यप मुनि या कश्यप ऋषि जो हैं उनकी अपनी पत्नी दिति से वार्तालाप हो रही थी इससे पहले और उन्होंने उनसे उनको बहुत उनकी बहुत उनका जो है उनकी बहुत सेवा की और सेवा करने के बदले में जब वो बहुत प्रसन्न हुए कश्यप ऋषि तो उन्होंने उनसे कहा कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र का शत्रु हो या इंद्र का नाश कर दे। तो ये बात सुनकर जो है कश्यप ऋषि को बहुत दुख हुआ और फिर उन्होंने बड़ी सारी जो है स्त्रियों के नेचर के बारे में जो है इससे पहले तक जितने भी श्लोक हुए हैं वो स्त्रियों के की क्या प्रकृति होती है उसके बारे में उन्होंने बताया। फिर जो है उनको लगा कि अब उसको कह चुके थे कि ठीक है तुम जो कहोगी मैं मानूंगा, तो उन्होंने कहा मुझे एक ऐसे पुत्र के लिए वरदान दीजिए। तो उन्होंने कहा कि एक शर्त लगा दी कश्यप ऋषि ने, कहा कि अगर आप एक व्रत का पालन करो तो फिर आपको एक ऐसा पुत्र होगा जो इंद्र को मार सकेगा। परंतु उनके पीछे जो है कश्यप ऋषि का यह भाव था कि इस तरह की जो तपस्या करने से जो है वो व्यक्ति शुद्धिकरण हो जाएगा और दिति के मन में से जो है ये उसके द्वेष की जो भावना है वो निकल जाएगी, और इसीलिए उन्होंने जो है पहले व्रत का विधान बताया। तो जो इससे पहले वाले जो श्लोक हैं मतलब 45 वाला जो श्लोक हैं तो उसमें जो है उन्होंने कुछ उसके बारे में बताया कि आपको इस तरह का व्रत करना होगा, और फिर दिति ने जो है वो कहा कि ठीक है आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। ये दोनों बातें हैं क्योंकि दिति ने भी अपनी तरफ से वचन दिया कि जो भी कश्यप ऋषि बोलेंगे वो करेंगी, और जो इसके बाद जो है कश्यप मुनि आज इसमें बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या करना है। अब कंटिन्यूअसली जो कुछ श्लोक हैं इसमें वो कश्यप ऋषि बताएंगे कि इनको क्या क्या करना है, दिति को क्या करना चाहिए। तो उनका उद्देश्य एकमात्र यही था कि दिति का जो है वो शुद्धिकरण हो जाए और उसके इंद्र के प्रति जो उसके मन में शत्रुता है उस भाव को छोड़ दे, और इसकी वजह से जो है वो इस तरह के वैष्णव के नियम जो हैं वो बता रहे हैं। कश्यप ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं है, वो प्रजापति हैं, मरीचि के पुत्र हैं और दक्ष प्रजापति की 13 बेटियों की शादी जो है इनसे हुई थी, मतलब दक्ष प्रजापति की 13 बेटियों जो है की जो शादी है वो कश्यप ऋषि से की गई थी। और आपको आश्चर्य लगेगा इनके कश्यप ऋषि के जो पुत्र हैं वो दानव भी हैं, दैत्य भी हैं, देवता भी हैं, पक्षी भी हैं, और इसके बाद सर्प भी हैं। इस तरह से अनेक तरह के इनकी अलग अलग पत्नियों से अनेक तरह के पुत्र हैं। जैसे इनकी सबसे पहली पत्नी कौन थी, अदिति, तो अदिति के जो पुत्र थे वो आदित्य कहलाए, वो जो 12 आदित्य थे जो कि सारे देवता थे उसमें, जिसमें एक भगवान स्वयं भी थे वामन, तो ये 12 आदित्यों में आते हैं। तो ये अदिति के पुत्र थे। इनकी दूसरी पत्नी दिति के जो पुत्र हैं वो सारे दैत्य हो गए, हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप जैसे बड़े बड़े दैत्य हो गए। उनके दानु एक पत्नी थी जिसके पुत्र दानव हुए, बहुत सारे दानव के बहुत प्रजाति थी। एक पत्नी इनकी विनीता थी जिसके सारे जो पुत्र हुए वो पक्षी थे जिसमें गरुड़ भी थे। तो और इनकी एक पत्नी थी कद्रु जिसके सारे पुत्र जो हैं वो सर्प हुए, जिसमें बास्की, तक्षक ये सब इनके पुत्र जो है कश्यप ऋषि के पुत्र हैं सब अलग अलग पत्नियों से। तो और जो इनकी एक पत्नी है कद्रु, उनके लिए एक लोक निर्धारित है, पूरा लोक उन्हीं का है, जो पाताल लोक से ऊपर है महातल जो लोक है वो केवल कद्रु का है। इसी तरह से जो है इनकी जो विविध पत्नियां थी, क्योंकि ये प्रजापति थे, दक्ष भी प्रजापति थे, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की थी और 4 कुमारों को उत्पन्न किया और 4 कुमारों ने जब सृष्टि करने से मना कर दिया था तो उसके बाद जो है उन्होंने इस तरह के पुत्र उत्पन्न किए, जब काम की उत्पत्ति करवाई भगवान से और फिर ये जो है सबके अंदर ये काम का बीज डाला, और उसके बाद फिर ये जैसी चीज जो जब उसके बाद जो संतानें हुई वो सबको उन्होंने जो है इस तरह से एंगेज किया कि तुम प्रजा को बढ़ाओ। तो एक एक जो उनके मतलब पुत्र थे उनकी कई कई संतानें थी। तो इसमें से ये भी तो अब कश्यप ऋषि के साथ जब इस तरह से हुआ कि दिति ने उनसे ये अनुरोध किया, प्रार्थना की कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए कि जो इंद्र का वध कर सके। अब इंद्र भी उन्हीं का पुत्र है, आप देखिए उन्हीं कश्यप ऋषि का पुत्र इंद्र भी है, और उनकी एक दूसरी पत्नी क्या कह रही है कि मुझे एक ऐसे पुत्र का वरदान दीजिए जो इंद्र का वध कर सके। तो उस पिता के लिए कैसी स्थिति है जो अपने ही पुत्र को मारने के लिए अपनी एक दूसरी पत्नी का जो है वो डिमांड पूरी जो है पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो लेकिन उनका भाव ये था कि किसी भी तरह से जो है वो दिति का जो है वो शुद्धिकरण हो जाए। तो तो इसीलिए उन्होंने इस जो व्रत के पालन करने के जो नियम बताए वो नियम से जो है उद्दीति का शुद्धिकरण निश्चित रूप से होगा ऐसा उनको विश्वास था। श्री राधा रानी कारमन भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री श्री गौर निताय जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी की। तो प्रभुपाद जी जो हैं इसमें एक एक शब्द पर बहुत जोर देते हैं, परपट में भी, पूरे परपट में उन्होंने उसी शब्द को लिया हुआ है, द्वेष। द्वेष जो है वो आप सब जानते हैं कि जो ये द्वेष छह जो हमारे शत्रु हैं, अनर्थाज हैं, उसमें प्रमुख हैं। ये कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मात्सर्य। तो मात्सर्य क्या है? यही द्वेष है। और इसका पर्सोनिफाइड व्यक्ति कौन है? द्वेष, द्वेष व्यक्ति के रूप में कौन है? शिशुपाल। जो स्वेष शिशुपाल है वो द्वेष का पर्सोनिफाइड है, द्वेष रूप में स्वयं विराजमान है। जो शिशुपाल जो है द्वेष का साक्षात रूप है वो। तो अभी थोड़े से चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि इतिहास में किस किस तरह के जो है इस तरह के लोग आए हैं जिन्होंने भगवान से, हालांकि प्रभुपाद लिखते हैं कि इस भौतिक जगत में जो कोई भी भक्त है, चाहे जो कोई भी प्राणी है, जो कोई भी प्राणी है या जो भी लिविंग एंटिटी है, वो द्वेष की वजह से है। अगर उसके अंदर द्वेष नहीं होता तो इस भौतिक जगत में नहीं होता। पहला लक्षण बता रहे प्रभुपाद जी कि अगर उसका जिस द्वेष नहीं होता भगवान से तो इस भौतिक जगत में उसका कोई मतलब नहीं था यहां होने का। इसका मतलब क्या है कि हम सबके अंदर द्वेष है, कम या ज्यादा। तो हमारे अंदर द्वेष है तो द्वेष सबसे ज्यादा द्वेष किसके प्रति है? भगवान के प्रति। हमारे अंदर सबसे ज्यादा द्वेष किसके प्रति है? भगवान के प्रति। आपको कि मैं तो कभी कुछ करता नहीं भगवान के, कैसे मेरे अंदर तो कोई द्वेष नहीं है भगवान के प्रति। तो ये साबित हो जाता है कि हम कैसे कुछ प्रसंगों को देखेंगे कि साबित हो जाएगा कि हम भगवान से सबसे ज्यादा द्वेष करते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं द सेक्स लाइफ इटसेल्फ इज ए एनवी टुवर्ड्स द लॉर्ड। जो है जो 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 जीवन है वो सेक्स लाइफ जो है वो भगवान के प्रति वैसे ही जो है वो द्वेष का लक्षण है। मतलब हम कृष्ण बनना चाहते हैं क्योंकि कृष्ण इंजॉय करते हैं, हमें भी इंजॉय करना चाहिए। हमारे मन में ये भावना आती है कि और कृष्ण से कम पर तो कोई रहना भी नहीं चाहता, विष्णु बन के भी कोई रहना नहीं चाहता। विष्णु एक पत्नी व्रता है ना, एक पत्नी रखते हैं, इतने पर भी कोई रुकने को तैयार नहीं है। सब कृष्ण बनना चाहता है, जिनकी बहुत सारी पत्नियां थी, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी, ऐसे बनना चाहते हैं हम। हमारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हो, बहुत सारी पत्नी हो, तो क्या है कि हम बिल्कुल रुकते नहीं है, सीधे कृष्ण तक ही आएंगे, विष्णु तक भी नहीं रुकेंगे। तो ये एनवीएस का लक्षण है, आप समझ रहे हो, ये प्योरली एनवीएस का लक्षण है। हम मैं एग्जिगरेट नहीं कर रहा हूं, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं क्षमा कर दीजिएगा मुझे। क्या होता है कि हम सबके अंदर जो लक्षण है कलयुग में वो क्या है कि छोटे छोटे रावण है हम लोग भी। पर रावण का कोई सिंह थोड़ी था, रावण का क्या मतलब था? दूसरों की स्त्री पर को प्राप्त करना चाहता था, दूसरों को धन को प्राप्त करना चाहता था, हर संसार के समस्त वस्तु को भोगना चाहता था। क्या हमारे अंदर ये भावना नहीं है? अंतर क्या है फिर? क्या हमारे अंदर ये भावना नहीं है? इसका मतलब क्या है कि हम भी उसी का एक मूर्त रूप है, छोटे रूप में, छोटे से हैं, क्योंकि हमारी हम सब की औकात ही इतनी छोटी है, तो हमारा वो भी बहुत छोटा ही है। तो निश्चित रूप से हम उसके एक्सटेंशन है। एक्चुअली में जो ये द्वेष होता है वो फेल्ड पर्सनैलिटी, जो व्यक्ति जीवन में कुछ कर नहीं पाता तो उसको द्वेष होना स्वाभाविक, उसके अंदर द्वेष उत्पन्न हो जाता है, या वो व्यक्ति जो है वो सबसे द्वेष करने लगता है। फिर जो व्यक्ति मान लीजिए अगर वो उसके 2-10 परिवार के लोग हर तरह से जो है वो कैपेबल हैं, हर तरह से चीजों में कर रहे हैं, वो व्यवसायिक रूप से उन्नत हैं, तो उस व्यक्ति के मन में इनफेरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और द्वेष स्वाभाविक रूप से अंदर द्वेष उत्पन्न हो जाता है। तो ये उसके अंदर ये लक्षण प्रकट होते हैं इस तरह से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये जो इच्छाएं हैं भोगने की वो उसकी पूरी नहीं हो रही है। वो देखता है दूसरे व्यक्ति की इच्छाएं पूरी हो रही हैं, वो खूब कमा रहा है, गाड़ी में चल रहा है, वो ऐसे कर रहा है, तो उसके अंदर ये द्वेष होने लगता है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो उसके अंदर ये द्वेष जो है बहुत तीव्रता से बढ़ने लगता है। तो ये फेल्ड पर्सनैलिटी जो है व्यक्तित्व का, मतलब असफल व्यक्तित्व का लक्षण है द्वेष। व्यक्ति असफल है तो असफल व्यक्तित्व का लक्षण द्वेष के रूप में प्रकट होता है, फिर उसके अंदर जो है बहुत सारा द्वेष होता है, और इस द्वेष के कारण जो है व्यक्ति अपने परिस्थितियों से, अपने पोजीशन से गिर जाता है। और हम भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भौतिक वर्ल्ड में द्वेष के कारण गिरे हैं। प्रभुपाद कई बार लिखते हैं कि ड्यू टू जो एनवियस वी हैव सेपरेटेड फ्रॉम कृष्णा, कि भगवान से जो है हम अलग हुए हैं केवल अपने द्वेष के कारण, जो है हम द्वेष के कारण जो है भगवान से अलग हुए हैं, कि आप जो है एंजॉय करते तो हमें भी करने दो। मालिक, नौकर अगर मालिक बनना चाहेगा तो कभी बन नहीं पाएगा, उसकी स्थिति ज्यादा खराब हो जाएगी। जीवात्मा अगर भगवान की तरह करना लगेगा तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी और उसको जो है वो माया चारों तरफ से लात मारेगी, और बार बार हमें इस भौतिक जीवन में जो है दुख मिलेगा, बार बार हमें मां के गर्भ में जाना पड़ेगा और बार बार फिर वहां से निकलेंगे और फिर वही जीवन सा रिपीटेड होगा। ये सारा जीवन में हम एक, आप सोचिए, एक ह्यूमन बॉडी, एक मानव का बच्चा है, वो रोता हुआ जन्म लेता है, जन्मता है कि नहीं रोता हुआ, सारा जीवन शिकायतें करता हुआ जीता है और अंत में पश्चाताप करके मर जाता है। यही है ह्यूमन हिस्ट्री, 70 साल की ह्यूमन हिस्ट्री यही है। 70 साल जिया, सारा जीवन कंप्लेन करता हुआ जीता है। 83,99,999 योनि में किसी का बच्चा रोता हुआ पैदा नहीं होता, किसी भी और योनि में, सिवाय मानव का बच्चा रोता हुआ पैदा होता, और सारे जीवन कंप्लेन करेगा। पढ़ाई में ठीक नहीं हुआ, कहेगा मम्मी आपने ट्यूशन नहीं लगवाई, आपने सही जगह पर ट्यूशन नहीं लगवाई, कहेगा ट्यूशन भी लगा रखा है आपने तो कहेगा सही जगह पर नहीं लगवाई जहां मैंने बोली थी। नौकरी नहीं मिली, कहेगा आपने अप्रोच नहीं लगवाई, मामा ने अप्रोच नहीं लगवाई, भाई ने अप्रोच नहीं किया, पापा जी ने कुछ किया ही नहीं, तो सारा जीवन है कंप्लेन करता रहता है और फिर अंत में पश्चाताप करके मर जाता है, वही खत्म हो गया। 70 साल बिता दिए, पता नहीं लगा कैसे बीत गया, 25,550 दिन बिता दिए इस पृथ्वी पर जन्म लेके, खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गई। वजह क्या है? द्वेष। और ये द्वेष बाकी चीजें, पांच जो वो हैं काम क्रोध मोह, ये जो अनर्थाज हैं उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक है। बाकी जो चार अनर्थ हैं, पांच अनर्थ हैं, उसको आप भगवान की सेवा में भी लगा सकते हो, बट ये कहीं नहीं लगता। आप देख लीजिए, ये द्वेष कहीं भी नहीं, कहां फिट ही नहीं होता है। आपके अंदर काम बहुत है तो गोपियों की तरह भाव विकसित करिए कृष्ण को, जो है काम आप गोप्यात, गोपियों ने काम की बदौलत कृष्ण को प्राप्त कर लिया, जो है तो कहने का मतलब है कि आप काम को, लस्ट को जो है भगवान की सेवा में लगा सकते हो। क्रोध है तो कहते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं उपदेशामृत में कि आप भगवान के भक्तों, जो नॉन एनवियस व्यक्ति है जो भगवान के प्रति या भक्तों के प्रति, उनके ऊपर क्रोध करिए आप, तो क्रोध को आप वहां लगा सकते हैं। लोभ तो भगवान के नाम लेने का, भगवान के कीर्तन करने का ग्रीड होना चाहिए, ये भी लोभ लग जाता है। मोह तो भगवान से अटैचमेंट बढ़ाइए, प्रेम करिए। मद तो मैं भगवान का दास हूं, इस बात का अहंकार भी हम कर सकते हैं, बट ये एनिमी का क्या होगा, ये कहीं फिट नहीं होता। ये एनिमी जो है कहीं फिट नहीं होता, तो इसीलिए पांचों छेबो जो वो है उसमें सबसे खतरनाक है ये एनवियस। और इस भौतिक जगत में जो है कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर एनवियस एनवी नहीं है, निश्चित रूप से है। प्रभुपाद लिखते हैं इसी परपट में, भक्तों को छोड़कर, भक्तों को के अंदर एनवियस नहीं होता, बट हां हम अगर भक्त ग्रेजुअल प्रोसेस में है, भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, शुद्ध भक्ति की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे अंदर भी एनवियस से हम भी वंचित नहीं होते, हमारे अंदर भी एनवियस होता है। कई बार भक्तों में आपस में कैसे एनवी हो जाती है, पोजीशन, दूसरे भक्त की पोजीशन देखकर। एक भक्त अगर दूसरे उससे ऊंचे पोजीशन पर बैठ गया तो उसको अब इस बात की एनवी होने लगती है कि ये मेरे से ऊंचे पद पर बैठ गया है। उसको गाड़ी की फैसिलिटी मिली है तो उसको ये इस बात पर चिढ़ है कि ये जब मर्जी गाड़ी से जा सकता है, मैं नहीं जा सकता, इस बात की एनवी हो जाती है। आप समझ रहे ये इसको बड़ी अच्छी सुविधा इसको ज्यादा बढ़िया सेवा मिली है, मेरे को दूसरी यही हमेशा यही वाली सेवा देते हैं। भक्तों में इस तरह की एनिमी जो है वो पनपती है। और भौतिक जगत में जो व्यक्ति है उसका तो की बात छोड़ दीजिए, उसमें कितनी तरह के एनवीएस होते हैं और किस कैसे कैसे एनवीएस होते हैं, वो व्यक्ति कितना जो उसके अंदर द्वेष भरा पड़ा होता है, वो द्वेष की मूर्ति होता है एक्चुअली में, हर चीज के लिए द्वेष होता है उसको। तो निश्चित रूप से जो है, और ये डिवोशनल सर्विस में जो है वो सबसे बड़ा भक्ति में सबसे बड़ा बाधा बताया गया है इसको डिवोशनल इसको द्वेष को। और अगर कोई व्यक्ति इस एनवीएस से और इस द्वेष से मुक्त है तो इसका मतलब वो लिबरेटेड स्टेज में है। प्रभुपाद लिखते हैं कि इफ वन इज फ्री फ्रॉम द एनवीएस इट मीन्स ही इज ऑन द लिबरेटेड स्टेज। एनवीएस से द्वेष से मुक्त होने का मतलब है वो मुक्ति के जो है स्तर पर है वो व्यक्ति, तो इसके अंदर अगर द्वेष नहीं है तो जैसे हम कई बार भक्तों के समाज में भी कहीं पर भी क्या होता है, कुछ भी बताना हो ये तो सुन लिया कि किसी की निंदा नहीं करनी है, बट अच्छा मैं आपको थोड़ी सी निंदा की बात नहीं कर रहा हूं, बस थोड़ी सी बता देता हूं आपको, ये निंदा नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मैंने देखा है ऐसा उनके प्रति, ये भी एनवीएस का लक्षण है, ये भी द्वेष है। हम चर्चा ही क्यों करें, कहीं ना कहीं आपको वो चीजें जो है वो प्रभावित कर रही है। हम भक्ति के माने बात सारे रूल को फॉलो करते हैं, बड़े बड़े बाहर की सारी चीजों को रोक देते हैं, बस अंदर जो है कई सारी चीजें भरी रहती हैं, जैसे मान की भावना, यश की भावना, प्रतिष्ठा की भावना, लोग मुझे भी पूछें, लोग मेरे भी वाहवाही करें, बढ़िया ताली बजाएं मैं, तो ये क्या है कि निश्चित रूप से हमें इस तरह से जो है हमारे अंदर इस तरह की भावना बढ़ी रहती है, और ये भावना जो है वो द्वेष को जन्म देता है। भोगने की जो प्रवृत्ति है, सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो एटीट्यूड है, वो द्वेष को जन्म देता है। अगर हमारा भोगने की प्रवृत्ति हमारी पूरी नहीं हो रही है तो हमारे अंदर द्वेष पैदा हो जाएगा। और इंद्रिय तृप्ति का मतलब एक नहीं होता, इंद्रिय तृप्ति का मतलब होता है बहुत सारे तरह की इंद्रिय तृप्तियां, जैसे बहुत सारी इंद्रियां हैं तो उनकी तृप्तियों का भी अलग अलग तरीके हैं। कई बार हम इंद्रिय तृप्ति का खाली एक अर्थ में लेते हैं, ऐसा नहीं है, इंद्रिय तृप्ति बहुत तरह, जीवा का इंद्रिय तृप्ति है, आंखों का इंद्रिय तृप्ति है, बहुत सारी चीजें इंद्रिय तृप्ति में आती हैं। तो इंद्रिय तृप्ति का भाव जहां कहीं भी है तो इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति जो है उसके अंदर ये द्वेष उत्पन्न होगा ही होगा। फिर जिस व्यक्ति के अंदर द्वेष है वो व्यक्ति कभी प्रेम नहीं कर सकता, जहां प्रेम होगा वहां द्वेष नहीं होगा, और जहां द्वेष होगा वहां प्रेम नहीं होगा। तो डिवोशनल लाइफ में ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ये विवाद एक दूसरे के विरोधी हैं। हम जिस डिवोशनल सर्विस की तरफ जाना चाहते हैं और जा रहे हैं वो प्रेमा भक्ति की तरफ जा रहे हैं, यानी कृष्ण से प्रेम करना है, तो कृष्ण से प्रेम करने के रास्ते में ये द्वेष जो है सबसे बड़ी बाधा है। और हम जैसे कि मैं बता रहा था कि हम जो है भगवान से द्वेष करते हैं, और सबसे ज्यादा भगवान से द्वेष करते हैं, कैसे करते हैं बताइए। अगर इस संसार में बैठे हुए किसी एक प्राणी से भी अगर आपका द्वेष है तो आप भगवान से द्वेष कर रहे हो। क्यों, कैसे? क्योंकि वो भी भगवान की संतान है। आप एक बेटे से द्वेष कर रहे हो, इसका मतलब उसके बाप से द्वेष कर रहे हो। मैं भक्तों को मानता, भक्तों की नहीं मानता, या किसकी नहीं मानता, या मंदिर के को जो सिस्टम है, या मंदिर का जो सिस्टम है, या मंदिर का जो अधिकारी वर्ग है, या जो है, हम उसको नहीं मानते, हम गुरु महाराज को मानते। नहीं, आप अपने गुरु को भी नहीं मानते, आप कृष्ण को भी नहीं मानते, वो अधिकारी भी गुरु के द्वारा बिठाए गए हैं। अगर किसी का उसमें फेत नहीं है तो अपने गुरु में फेत नहीं है, किसी का अपने गुरु में फेत नहीं है तो कृष्ण में फेत नहीं है। एकदम सिंपल सा मतलब है इसका। तो आप किसी एक जीवात्मा से द्वेष करते हैं तो क्या मतलब है कि आप भगवान से द्वेष कर रहे हैं। किसी, वो सब भगवान की संतान है। भगवान के लिए एक अरबपति का भी वही मूल्य है, एक अंबानी का भी उनकी नजर में वही मूल्य है जो मायापुरी के रेड लाइट पर हाथ कटे हुए, पैर कटे हुए भिखमंगे का मूल्य है। भगवान की नजरों में दोनों में से कोई ऊपर और नीचे नहीं है, दोनों में बराबर है। भगवान की नजर में वही व्यक्ति ऊपर है जो भक्ति करता है, उनका नाम लेता है। बाकी मेटेरियल भौतिक जगत में और जो कोई जीव, कोई भी जीव है, उनके लिए बराबर ही है। केवल भक्त जो है वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब हम किसी से भी द्वेष कर रहे हैं तो हम भगवान से द्वेष कर रहे हैं। हम संसार को भोगना चाहते हैं, इसका मतलब हम कृष्ण से द्वेष करते हैं। शास्त्रों के अनुसार से प्रभुपाद जी ने जैसे बताया है उसके हिसाब से यही लक्षण है, ये इसका एनबीएस का जो है वो यही लक्षण है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो है बैड एसोसिएशन, गलत व्यक्तियों का संग करके जो है हमारे अंदर एनबी जो है ये द्वेष पैदा होता है। ऐसे व्यक्तियों का संग में रह करके, ऐसे व्यक्तियों का साथ में रह करके जो व्यक्ति एनबीएस है हमें भी इस तरह का बना देगा। ये कॉन्टेंजियस है, ये मतलब छुआछूत वाला है। एक व्यक्ति को लगा हुआ है, आप उसके साथ बार बार बैठते हो तो ये रोग आपको भी लग जाएगा, आपके अंदर भी वो द्वेष जो है पनप जाएगा। तो हमें ये बात जो है बहुत ध्यान रखना चाहिए। और इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, इस बात का हमें बार बार याद रखना चाहिए कि ये सभी अनर्थों का लीडर है। ये जिस व्यक्ति में एनवीएस होगा, जो व्यक्ति के अंदर द्वेष होगा, उसके अंदर काम भी होगा, उसके अंदर क्रोध भी होगा, उसके अंदर लोभ भी होगा, उसके अंदर मोह भी होगा, और जो है ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। जैसे 1000 के नोट में सारे नोट है ना, इसी से एनवी के अंदर में सारे हैं, सारे अनर्था एनवी के अंदर हैं, क्रोध द्वेष के अंदर सारे अनर्था हैं। एक द्वेष आ गया आप में तो इसका मतलब समझ लीजिए कंप्लीट है, आपके अंदर सारे अनर्थ हैं। तो इसलिए इस द्वेष से बचने का प्रयास करना चाहिए। हम इतिहास में भी देखोगे आप बड़े बड़े जो है द्वेषी लोग हुए हैं, बहुत सारे द्वेषी लोग हुए हैं। क्योंकि और प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि हर व्यक्ति जो कंडीशन स्टेज में है, जो बद्ध अवस्था में है, वो व्यक्ति जो है उसके अंदर द्वेष है ही है, निश्चित रूप से है। जो व्यक्ति बद्ध अवस्था में है इसका मतलब उसके अंदर अभी द्वेष है। जो व्यक्ति द्वेषी नहीं होगा वो भगवान को पूरी 100% समर्पण कर देगा। 100% समर्पण नहीं है, चाहे मेरा है या आपका है, इसका मतलब हम सब द्वेषी हैं। मैं भी 100% सरेंडर नहीं हूं, इसका मतलब मैं भी कृष्ण से द्वेष करता हूं। तभी तो हम सरेंडर नहीं करते। भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज बता रहे थे एक बार मायापुर में कि जब हम बहुत अच्छा जप करेंगे तो हम जप करते नहीं है अच्छा, इसलिए हमारे हृदय को छूता नहीं है, टच नहीं करता। अगर वो जप ने हमारे हृदय को कभी छुआ होता तो हमारे जीने का तरीका बदल जाता। हम तो इसको एक प्रॉब्लम के रूप में जप करते हैं, किसी तरह 16 माला पूरे किया और रखते हैं, पूरे 16 माला पूरी करनी है, एक प्रॉब्लम के रूप में लेते हैं, किसी तरह कब जल्दी हो जाए, पूरी जल्दी करके वो चलो एक साइड करो, इसको फ्री हो जाएंगे। फिर फ्री हो जाने का पता प्रॉब्लम के रूप में देखते हो ना, तब फ्री होना चाहते हो। सततम कीर्तियन तो महाप्रभु ने कहा कि हमेशा कीर्तन करते रहना चाहिए, और हम 16 राउंड होते ही माला को दूर कर देते हैं। चलो बोला हुआ है, दीक्षा ले ली है बाई फॉल्ट, कैसे भी दीक्षा मिल गई या ले ली, चलो अब तो करना ही है 16 माला करके किनारे कर लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अभी भी एनबीएस है, हमारे अंदर अभी भी द्वेष है। चाहे मैं हूं या कोई भाई, बुरा मत मानिएगा, इन सबका स्थिति यही है। प्रभुपाद लिखते हैं जो व्यक्ति 100% सरेंडर नहीं है इसका मतलब वो द्वेषी है। 100% सरेंडर। और ये द्वेष का और उत्पन्न कैसे होता है, जो है फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी से। जब हम फॉल्ट फाइंड करते हैं दूसरे व्यक्ति के अंदर तो हमारे अंदर जो है द्वेष उत्पन्न हो जाता है, दूसरे व्यक्ति के अंदर जो है द्वेष जो है वो गलतियां ढूंढने का प्रयास करते हैं। इस व्यक्ति के अंदर ये गलती देखी, उसने यहां देख लिया, आपका कोई मतलब नहीं है, वो व्यक्ति गलती कर रहा है, तो आप उसके मास्टर नहीं हो। भगवान ने आपको मैनेजर बना के नहीं भेजा है उस व्यक्ति की गलती ढूंढना। स्टिक टू योर एरिया ऑफ कंसर्न, आप अपने एरिया ऑफ कंसर्न से चिपक के रहिए। मेरे अंदर का द्वेष आपकी चिंता का कारण नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर का अनर्थ मेरे अंदर आपकी चिंता, मेरे अंदर का अनर्थ जो है मेरे गुरु के लिए, मेरे शिक्षा गुरु के लिए चिंता का कारण है, बट आपकी चिंता का कारण नहीं है, इसलिए आप मत बोलिए, क्योंकि आपको अपराध लगेगा। आप समझ रहे हो बात को? तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस और एरिया ऑफ कंसर्न का ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए आप में किसी में द्वेष कुछ गलत देखते भी हो तो आपके कहने से क्या व्यक्ति रुक जाएगा? तो फिर हम बोले क्यों? मेरे कहने से अगर वो व्यक्ति रुकने वाला नहीं है और मेरे कहने से वो कुछ तरह से रोकेगा नहीं अपने आप को, तो हम बोले क्यों फिर? एक एक शब्द की का हिसाब देना पड़ता है। एक एक शब्द अगर आपने बोला है उसका भी हिसाब देना पड़ेगा यमराज जी के कोर्ट में, एक शब्द का, एक वर्ड का हिसाब देना पड़ता है। एक शेख सादी एक अरब में एक फिलोसफर हुए, वो कहते थे कि या तो खामोश रहो हमेशा, या ऐसी बात बोलो जो खामोशी से बेहतर हो। क्या आप कहोगे कि बस अब जो है अब इसके बिना बोले नहीं रहना चाहिए, तब बोलना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति को चुप रहने का प्रैक्टिस करना चाहिए। मौन जो है अनंत की भाषा है, भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं कि मौन रहना, मौनम चैवासि गुह्या नाम, भगवान भगवद गीता के 10वें अध्याय में यह बात भी बता रहे हैं कि जो मौन है वो भगवान कह रहे हैं कि ये एक लक्षण है साधु का, मौन रहना। तो हमें यह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभी नहीं, अभी तो हमारा रिएक्शन पैटर्न इतना तेज है, एक व्यक्ति ने कुछ बोला हमने धार दूसरा मार दिया, नहले पे दहला कर देते हैं, सेकंड से पहले रिएक्ट कर देते हैं, हमारा कोई मतलब भी नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम रिएक्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ कंसर्न और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस का ध्यान रखना चाहिए, तभी आप इन चीजों से बचे रहोगे। और ये जो है बिना सरेंडर के, प्रभुपाद लिखते हैं एक जगह कि बिना समर्पण किए हुए ये एनवी जाति भी नहीं है, भगवान को जब तक हम पूरी तरह से सरेंडर नहीं करेंगे ये एनवी जो है वो हम द्वेष हमारे अंदर से बिल्कुल नहीं जाएगी। आप इतिहास देखिए, जो शिशुपाल था वो सारा जीवन उसने भगवान कृष्ण से द्वेष किया, जन्म से पैदा होते ही उसके अंदर जो है वो द्वेष था, वो द्वेषी था, वो सारा जीवन उसने कृष्ण से द्वेष किया सारा जीवन। ये कौन है ये शिशुपाल कौन है? ये राम अवतार में जयंत था, ये इंद्र का पुत्र जिसने सीता के पैर में नाक चोंच मारी थी। अगर आप सबको अगर राम कथा के बारे में पता हो तो ये वही जयंत है जो द्वापर युग में शिशुपाल के रूप में पैदा हो गया। ये भगवान का कजन था, ये भाई था भगवान का, ये और दंतभक्त दोनों भगवान के भाई थे और दोनों भगवान से द्वेष करते थे, जन्मजात द्वेषी थे, भगवान कृष्ण से द्वेष करते थे दोनों ही, दंतभक्त भी और शिशुपाल भी। राजकुमार था, एक राजा था, पर उनके अंदर से यह भावना कभी नहीं गई। राजकुमार रुक्मी क्या, देखिए भीष्मक का पुत्र था, इतने बड़े पायस राजा थे भीष्मक, जिसकी बेटी स्वयं रुक्मिणी जी होंगी वो राजा कैसे होंगे? रुक्मिणी जी ने जिसके घर में आना स्वीकार किया कैसे पायस राजा होंगे? पर बेटा कैसा था रुक्मी? बहुत बड़ा द्वेषी, पर शुरू वो बचपन से द्वेषी नहीं था, वो उसकी शिक्षा बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी उसने। वो द्वेषी कब बना? जब शिशुपाल के संसर्ग में आया, जब एसोसिएशन में आके वो द्वेषी बन गया। तो ये एसोसिएशन कैसे, व्यक्ति का जो द्वेषी व्यक्ति का उसको एसोसिएट किया उसने, द्वेषी व्यक्तियों के संग में रहा, संग लिया, तो खुद द्वेषी बन गया। और बाद में वो परिणाम क्या हुआ कि बलराम जी के हाथों मारा गया। इसी तरह आप इतिहास में देखो दुर्योधन को, सारा जीवन उसने द्वेष किया पांडवों से, सारा जीवन जब से पैदा हुआ वो जो है अब द्वेष ही करता रहा। तो ये अंदर जो है ये द्वेष की जो भावना है ये अब दुर्योधन जो है अब हुआ परिणाम देखिए फिर इसका भी क्या परिणाम हुआ कि क्योंकि सारा जीवन उसने भी द्वेष किया। रामलीला में देख रहे मंथरा भगवान राम से द्वेष करती थी, इसलिए उसने क्या किया, केकई को जो है उसने पढ़ा करके भगवान राम को वनवास के लिए भेज दिया। और इसके बाद हम देखते हैं कि दक्ष को, जो दक्ष थे, दक्ष किससे द्वेष करते थे? शिव जी से। आज महाशिवरात्रि है कि भाई चांस शिवजी, वो दक्ष जो है वो शिवजी से द्वेष करते थे अकारण ही, सिर्फ इसलिए कि सती ने जो है वो शिवजी से शादी करने की ठान ली थी कि मैं शिव से ही शादी करूंगी, इस बात के लेकर उसको द्वेष होने लग गया। और इस बात का जो है एक बार एक उसमें एक सभा में जब वो गए तो शिवजी जो है खड़े नहीं हुए उनको देखकर, सारे लोग खड़े हो गए, पर वो शिवजी खड़े नहीं हुए क्योंकि शिवजी ध्यान में थे, उनको पता नहीं कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। उसको लगा मेरा मान नहीं किया इस व्यक्ति ने, तो शिवजी से द्वेष करता रहा और अंत में परिणाम क्या हुआ, बकरे का सिर लग गया उसके। अब समझ लो कहने का मतलब कितने कितने बड़े द्वेषी हुए हैं। अब भाई सारे कैरेक्टर भागवतम में है ये। और इंद्र देखो अक्सर द्वेष हो जाता है इनको, क्यों होता है बताओ आप? सबसे प्रॉब्लम होने लगती है इंद्र को, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे अमेरिका को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, कोई छोटी कंट्री भी कुछ करेगा तो उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। भाई बॉम्ब ईरान बना रहा था, तेरों की क्या समस्या है, उसको प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम बांग्लादेश को हो रही है, उसको प्रॉब्लम हो जाती है। उत्तर कोरिया यहां बैठा हुआ चीन के पास में और अमेरिका यहां दूर बैठा हुआ, उसको प्रॉब्लम होती है, वो क्यों परमाणु बम बना रहा है। वो इंद्र की तरह है बिल्कुल भी, कोई भी तपस्या करे उसको प्रॉब्लम होने लग जाती थी। इंद्र को क्यों पता है आपको? क्योंकि इंद्र जो है वो भोगने के प्रतीक है, वो इंद्रिय तृप्ति के प्रतीक है। इंद्र जब वो इंद्रिय तृप्ति में बहुत बहुत व्यक्ति बहुत संलग्न होता है, बहुत तृप्त लगा होता है, तो उसको हर छोटी मोटी बात से खतरा उत्पन्न होता है। कहीं ये चक्कर तो नहीं, कहीं मेरे कुर्सी को खतरा तो नहीं। अब समझो कहीं कोई भी अच्छा लीडर बन जाएगा, दूसरे लीडर परेशान हो जाता है। कोई ईमानदार व्यक्ति लीडर बन जाए, ईमानदार व्यक्ति कहीं पोस्ट पर आ जाए, कहीं आगे हमारी प्रॉब्लम तो नहीं करेगा उसको। ये व्यक्ति जो है ये भक्ति के लक्षण नहीं है। एक्चुअल में भक्ति जो पहला सबसे पहला गुण उत्पन्न करती है किसी व्यक्ति में, वो क्या है? फियरलेसनेस, निर्भयता। अगर हम भक्ति करके भी निर्भय नहीं हुए, भक्ति करके भी हमें हर चीजों से डर लग रहा है, इसका मतलब हमारी भक्ति थर्ड क्लास की है, एकदम थर्ड क्लास की भक्ति है। यकीन मानिए निश्चित रूप से हम जो है हम अच्छी भक्ति नहीं कर रहे हैं। भयभीत होना भक्ति का लक्षण नहीं है। भक्त को किसी बात का डर है? उसे किस बात का डर होना चाहिए? अगर वो कृष्ण के संरक्षण में है तो उसे किस बात का डर होना चाहिए? इसका मतलब अपने आप को संरक्षण नहीं मानता वो कृष्ण का, कि मेरे ऊपर कृष्ण का संरक्षण है, तभी डरता है। तो भय, ये जो लक्षण है ये भयभीत होना, भयभीत होते रहते हैं। इंद्र भी इसी तरह से भयभीत होते हैं, कोई कुछ भी करे। पृथ्वी महाराज ने यज्ञ करना शुरू किया, उनको प्रॉब्लम हो गई। कोई भी आप देखिए हिस्ट्री में कितनी, कोई भी बड़ा यज्ञ करता है, तपस्या, विश्वामित्र तपस्या करें, सौबरी मुनि तपस्या करें, कोई यज्ञ करे बड़ा, इंद्र को प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। क्योंकि जो व्यक्ति जितने भोग में लिप्त होगा उसको उतना ज्यादा खतरा होता है, वो अपने आप को उतना जो है वो घिरा हुआ है, खतरे में महसूस करता है। इंद्र के साथ भी यही है। और इसी तरह से हम भागवत में और भी कैरेक्टर देखते हैं। कृतिदूती जो है महाराज चित्रकेतु की पत्नी थी, जिसकी जिसका एक बेटा हुआ था हर्षशोक, सारी रानियां उससे जलने लगी, सारे ने द्वेष कर दिया और परिणाम क्या हुआ, उस बच्चे को मार दिया द्वेष की वजह से। उस द्वेष की वजह से क्या हुआ, उसने उस हर्षशोक को मार दिया, उन्होंने जहर दे दिया हर्षशोक को अपने जो है। ये सब सारे कैरेक्टर भागवतम के हैं, सिर्फ इसलिए दिया गया है कि हम इस चीज को सीखें और हमारे लिए क्या लेसन है कि हम इस चीज को ना करें। हमारे लिए ये लेसन है, ये सिर्फ कथा करने के लिए नहीं है। हर किस कथा के पीछे भागवतम में जो जो है वो हर चीज के पीछे एक एक मैसेज है कि हमें क्या करना है। इसमें से किसी भी कैरेक्टर को ये नहीं पता था कि मेरी कथा भागवतम में आने वाली है। आप समझ रहे हो, किसी को थोड़ी पता था मेरी कथा भागवतम में आएगी। और व्यासदेव तो 17 पुराणों की रचना करके बंद कर चुके थे। मैं कल ही पढ़ रहा था जो रूप गोस्वामी के उसमें लघु भागवतामृत में, तो उसमें लिखते हैं 17 जो पुराण हैं वो साध्य हैं, साधन हैं, और भागवतम क्या है, साध्य हैं। 17 पुराण साधन हैं किसके लिए, भागवतम को पढ़ने के लिए। भागवतम साध्य है, अगर कोई भागवतम को पढ़ता है तो उसको, उसने आप समझ लीजिए वो कृष्ण से साक्षात एसोसिएशन कर रहा है, यानी कृष्ण का संग ले रहा है। भागवतम की कथा सुनना, भागवतम को टच करना, भागवतम को भागवतम के श्लोक पढ़ना, भागवत को सिर से लगाना, ये अपने आप में इतना ऑस्पिशियस है कि आपके सारे अमंगल को दूर कर देगी, ये सारे कैटअप धर्म को खत्म कर देता है। भागवतम के प्रथम स्कंध के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में इस बात को कहा गया, धर्म प्रोज्जित कैटबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। आप वहां से निर्मत्सर शब्द का प्रयोग किया गया वहां पर, द्वेष रहित कर देगा ये भागवतम, पढ़ के आप द्वेष रहित हो जाओगे। तो द्वेष रहित होने के लिए यह भी एक तरीका है कि हम भागवतम को पढ़ें। फिर रामचंद्रपुरी महाप्रभु की लीला में देखिए, महाप्रभु से ही द्वेष करते थे, अपने गुरु जो है उनसे भी द्वेष करते थे, माधवेंद्रपुरी से द्वेष करते थे, सॉरी वो ईश्वरपुरी, उनके गुरु कौन थे, माधवेंद्रपुरी से ही, माधवेंद्रपुरी से द्वेष करते थे, और महाप्रभु से अपने गुरु भाई से द्वेष करते थे महाप्रभु से। तो निश्चित रूप से हम देख सकते हैं इस चीजों को कि रामचंद्रपुरी जो है महाप्रभु से उनको द्वेष होता था। कैसा द्वेष है बताइए, महाभगवान से ही द्वेष होना, साक्षात भगवान है वहां पर तब भी द्वेष हो रहा है। गोपाल चप्पल किससे द्वेष करते थे, हरिदास ठाकुर से। हरिदास ठाकुर ने जब कहा था कि नामाभास की स्थिति में आकर के कोई व्यक्ति जो है कोई नामाभास के स्टेज में पहुंच जाए तो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, तो ये बात उनको पची नहीं, कहा कि ये तुम्हारी बात अगर गलत निकली तो मैं तुम्हारे नाक काट दूंगा। तो नाक किसकी कट गई, उस गोपाल चप्पल की नाक जो है क्रोध कोर हो गया और उसका नाक बह गया, भगवान से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं वो द्वेष के इतिहास में देखने को मिलते हैं, और भी बड़ी सारी थी, बट फिर वे आउट किया है इसका, फिर दूर कैसे करें, ये प्रॉब्लम तो है तो दूर कैसे कर, तरीका क्या है। सबसे पहला तरीका है श्रीमद् भागवतम को रोज पढ़िए, श्रीमद् भागवतम को रोज विदाउट फेल पढ़िए। ये ऐसे संस्कार, ऐसे शुभ चीजें आपके ऑरा बना देगा कि आपके पास कोई अमंगल होगा ही होगा, कभी कोई अमंगल नहीं होगा आपका। भगवान पर फेथ रखिए, सत्य को कोई परेशान कर सकता है पराजित नहीं कर सकता, सत्य अपने आप में इतना पावरफुल है कि उसको जो है कोई व्यक्ति डिफीट नहीं कर सकता। ये उपनिषद का वाक्य है, सत्यमेव जयते नानृतम जयेत, कि अनृत का या झूठ का कभी जय नहीं होगा, सत्य का हमेशा जय होगा। फिर रीडिंग जो है शास्त्रों को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, जो भगवद गीता है, भागवत या प्रभुपाद की बुक्स जो पढ़ते हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करिए, ये दूसरा तरीका है। तीसरा, बहुत ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास करिए। हमारे समस्या का समाधान जप करना नहीं है, केवल जप करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, ध्यानपूर्वक जप करने से समस्या का समाधान होगा, बहुत ध्यानपूर्वक जप करना पड़ेगा। नहीं तो यही ये जो माला है, ये जो जप है, आपको सारे जीवन में भौतिक चीजें आपके लिए ला के रख देगा, आप जो चाहोगे वो मिल जाएगा पर भक्ति तब भी नहीं मिलेगी। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर मां के गर्भ में जाएंगे फिर बाहर आएंगे फिर निकलेंगे फिर मां के गर्भ में जाएंगे, और बार बार ये कहानी चलती रहेगी, क्योंकि ये इसका फल व्यर्थ नहीं जाता, हरि नाम कभी व्यर्थ जाएगा ही नहीं, चाहे कोई कैसे भी ले रहा है, तो होगा क्या, वो भौतिक फल देगा फिर। तो इसलिए ध्यानपूर्वक जप करिए। ध्यानपूर्वक जप करने का मतलब है आप कभी भी कर सकते हो, किसी समय भी कर सकते हो, खा के भी कर सकते हो, बिना खाए भी कर सकते हो, बट ये छूट नहीं है कि आप ध्यानपूर्वक जप नहीं करना चाहिए, जहां भी करें, जिस जगह पर भी करें, जिस समय भी करें, ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए। खाकर करें छूट है, बिना नहाए भी कर सकते हो ये भी छूट है, चल के कर सकते हो ये भी छूट है, सुबह कर सकते हो ये भी छूट है, शाम को भी कर सकते हो, रात को कर सकते हो ये भी छूट है, बस ध्यानपूर्वक ना करने की छूट नहीं है। निश्चित रूप से हमें जहां भी जब भी करें बहुत ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए। ध्यानपूर्वक का मतलब है कि जप को सुनना है, अभी हमारे लिए ध्यानपूर्वक का मतलब है कि जप को सुनना है, पूरी पूरी माला निकल जाती है, समझ में नहीं आता पूरी माला कितनी माला हो गई, ठाक ठाक निकलता जाता है, पता चलता है अब 12 हो गए, सुना कितनी बार, 12 बार भी नहीं सुना, 12 माला हो गई मैं इसमें, खुद ही महामंत्र बोल रहे हैं खुद ही नहीं सुन रहे, आप समझ रहे बात को, ये कितनी खतरनाक है ये। तो बहुत ध्यानपूर्वक जो है जप करने का प्रयास करिए। बड़े कई काफी सारे मैं डिवोटीज को देखा है, वो 16 माला 16 शब्द ही नहीं बोलते। बुरा मत मानिएगा प्लीज, आप रिकॉर्ड करिए अपनी चैंटिंग, किसी को बोलिए कि चुपके से आपके आपकी चैंटिंग को रिकॉर्ड करेगा। प्रभु जी मैं कैसा जप करता हूं जरा रिकॉर्ड कर लेना कभी। अपने घर के लोगों को बोलिए कि मैं जब जप कर रहा हूं तो मेरे को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं कैसे जप करता हूं। आपको पता लग जाएगा हम कैसे जप करते हैं। इसलिए तो हमारे अंदर से द्वेष नहीं जाता, भक्ति में है तब भी द्वेष बना हुआ है। क्यों? क्योंकि सब कुछ साथ में चल रहा है, बाकी चीजें भी साथ में चल रही है। फिर डिवोटी को जो भगवान के पास टाइम सुनने का प्रयास करिए, भगवान की कथा सुनने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिए कि भगवान की कथा सुनने से जो है, ये भागवतम की कथा सुनने से ये भगवान हमारे हृदय की स्मेल को दूर कर देंगे। डिवोटीज को सर्व करने का प्रयास करिए, जहां भी मिले जब भी मौका मिले डिवोटी की सेवा करिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। हमेशा भक्तों का गुणगान करना चाहिए, ये नेक्स्ट है कि जब भी मौका मिले भक्तों का गुणगान करना चाहिए, पर झूठा गुणगान नहीं करना चाहिए, ये भी सुन लीजिए, नहीं तो आपका भी शुद्धिकरण नहीं होगा, उस भक्त का भी शुद्धिकरण नहीं होगा। भगवान भागवतम के 11वें स्कंद की मैं उद्धव को समझा रहे हैं ये बात कि कोई भी व्यक्ति किसी की निंदा या प्रशंसा अकारण करता है या बिना उस क्वालिफाइड किए करता है तो व्यक्ति अपने पथ से डेविएट हो जाता है, वो व्यक्ति खत्म हो जाता है। इसलिए अकारण वो तरीका है, सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति में वो क्वालिफिकेशन है तब उसका गुणगान करिए, प्रभु जी आप तो क्या करते हैं, प्रभु जी क्या बढ़िया कर दिया, पता आपको भी पता है आपने अच्छा नहीं बताया, बड़ा हम बोलते हैं प्रभु जी क्या बताते हो आप। अगर सचमुच जेन्यून हमारे अंदर ग्लोरिफिकेशन है तो जरूर करें, पर नहीं है तो चुप रहें, कम से कम अपना अनर्थ और मत बढ़ाइए। इससे क्या होता है कि हमारे अनर्थ और सीमेंटेड हो जाते हैं, यानी और स्थित और ताकतवर हो जाएंगे। संस्कार कैसे छपता है बताइए, जैसे मान लीजिए कोई स्त्री जा रही है और मैंने देखा उसको, ऐसा नहीं कि कुछ हो जाएगा, मैंने देख लिया ठीक है, क्या समस्या है, या कोई पुरुष जा रहा है आपने किसी को देख लिया, कोई समस्या नहीं है इसमें। पर क्या है कि एक बार देखोगे आपने, फिर नजरें नहीं नीचे की, फिर दोबारा भी देखोगे आप, फिर तीसरी बार भी, फिर दूसरे दिन दूसरे को देखोगे और तीसरे दिन फिर तीसरे को देखोगे, धीरे धीरे क्या है ये संस्कार छपता जा रहा है। अब पहले दिन एक क्षण के लिए देखा था, अब दूसरे क्षण के लिए देखेंगे, अब तीसरे दिन पता चला 3 मिनट के लिए देखते रहे, चौथे टाइम पता चला आंखें नहीं नीची हो रही है। इसी तरह से संस्कार जो है गहरे होते जाते हैं, ऐसे छपता है संस्कार। तो वेरी बहुत बिगिनिंग में जो है उसको पकड़ के मसल देना चाहिए। इसीलिए भक्त को बोला जाता है उसको किसी के गाइडेंस में भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए, जो व्यक्ति आपके ऊपर नजर भी रख सके, इसीलिए चाहिए भक्त। और फिर खैर ये अलग ऑल टुगेदर अलग टॉपिक है। उसके बाद जो है हम अपने शरीर को मन को और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, तीनों चीजों को जहां भी जब भी मौका मिले जिस चीज को सेवा में लगाने का, भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करिए, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर जो द्वेष है वो धीरे धीरे कम आ जाएगा, कम हो जाएगा। फिर जो एनवियस व्यक्ति है, जो द्वेषी व्यक्ति है, उससे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। आपको पता है कि ये बात हमेशा इस तरह की बातें करता है, तो उस व्यक्ति से दूर रहने का प्रयास करिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, सो कॉल्ड बड़े डिवोटी भी क्यों ना हो, आपको लगता है तब भी उससे दूर रहने का प्रयास करिए अगर वो एनबीएस है तो। और दूसरों में दोष देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपका बिजनेस नहीं है, कंप्लीटली बंद कर दीजिए, मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरे को मुझे भगवान ने इसलिए नहीं भेजा है। अगर आपको किसी में द्वेष देखते, किसी में कोई गलती देखते भी हो, तो आप ये सोचो भगवान आपको ये समझाना चाहते हैं कि तुझे ऐसा भक्त नहीं बनना है। आपने कल को स्वर्णपति दास को मंदिर में चोरी करते हुए देखा, तो आपको बोलने का अधिकार नहीं, आप सिर्फ इतना सोचिए कि मुझे इसके जैसा चोर भक्त नहीं बनना है, ये सीख लीजिए। बट उसके फॉल्ट को दूसरे को कीर्तन मत करिए, प्रभु जी मंदिर में तो ऐसा होता है, ये आपका अधिकार नहीं है, दिस इज नॉट योर बिजनेस। अगर हम ये सब काम करेंगे तो निश्चित रूप से प्रभुपाद लिखते हैं कि हम लोग द्वेष से रहित हो जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न की किसी का कोई प्रश्न है? यस प्रभु जी। नहीं, तब भी नहीं करना चाहिए। नहीं, क्योंकि आप अगर उसके देखो, या तो व्यक्ति आपके अंडर में है, या आप उसके लीडर हो, या आप उसके बॉस हो, तो फिर तो ठीक है कि आप उसको रोक सकते हो। अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं हो तो आपका कोई अधिकार नहीं है। ये मैं भक्ति के कॉन्टेस्ट में बात कर रहा हूं, ये मैं मेटेरियल कंसेप्ट में बात नहीं कर रहा हूं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। कहीं आप ये सोच रहे हो कि मैंने देखा प्रभु जी मैं गवाही नहीं दूं, उसकी मतलब नहीं है ये। मैं केवल भक्ति के कॉन्टेस्ट में बात कर रहा हूं, इसका भौतिक जीवन से कोई लेना देना नहीं।
हरे कृष्ण।
ठीक है, यस प्रभु। समझा तो सकते हैं हम एक बात, उसी समय मत समझाइए, पर जब चीजें खत्म हो जाती है उसके बाद आराम से बैठ के आप उसको बता सकते हैं कि आपने ऐसी ऐसी गलती करी है, तो अगर वो सुधर गए तो ठीक है, पर आगे से आप देखते हो कि फिर भी वही कर रहा है, देन नहीं बोलना चाहिए। फिर इसको टॉलरेट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी तपस्या अब शुरू होती है कि मुझे इस व्यक्ति ये गलती करता है और मुझे इसको देखते हुए भी इसकी गलती को चुपचाप सहना है। देखो, अगर आप बच्चे आपकी बात मानने को तैयार हैं और सुनते हैं तो फिर तो समझा सकते हो आप, पर अगर आपको लगता है कि वो बच्चे बोलने के बावजूद भी बताने के बावजूद मानने को तैयार नहीं है, फिर अपने आप को समझा लो आप, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक बात, सही बात है। पति पत्नी एक है ही नहीं तो विचार कैसे मिलेंगे, बताइए। वो अलग जीवात्मा है, आप अलग जीवात्मा हो, किसी में भी चीज में। एक्चुअली मैं सबका तरीका, या दो भक्तों के विचार नहीं मिलते, सबका उद्देश्य एक ही है ना, बट मेरा तरीका अलग है, कोई कल स्पीकर आएगा उसका अलग तरीका है बताने का, परसों एक अलग स्पीकर आएंगे उनका अलग तरीका होगा बताने का, कभी नहीं मिलेगा। प्रभु जी हमें इस डिफरेंसेस को, इस भेद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, टॉलरेट करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। नहीं, ये आप मटेरियल चीजें हैं, इस पर कानूनी कार्रवाई करो आप, पर उसके द्वेष क्यों नहीं करोगे? निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, पर द्वेष रहित होकर करना है। आप समझ रहे हो, ये बहुत मुश्किल है ये, पर द्वेष रहित होकर करना है।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
यस प्रभु जी।
प्रभु जी, इस संसार के अंदर मतलब ऐसा तो पॉसिबल होता ही नहीं कि अभी द्वेष ना रहे, किसी ना किसी से किसी ना किसी बात पे तो द्वेष चलता रहेगा, मतलब हमारी स्थिति ऐसी
नहीं चलेगा। प्रभु जी, अगर आप भक्ति अच्छी कर रहे हो तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, आपका मन ही नहीं होगा मैं किसी से द्वेष करूं। आप करके देखो भक्ति, आप अपनी चैंटिंग इंप्रूव करके देखो, सब खत्म हो जाएगा। मैंने ऐसे भक्त देखे हैं जिनके अंदर बहुत सी जब चीजें थी और आज वो व्यक्ति बिल्कुल उसको कोई मतलब नहीं है किसी दुनिया में कुछ भी हो जाए। भक्त का एक्चुअल मतलब यही है। आज आप अपना जपा इंप्रूव करो तो आप देखोगे ये सब चीजें अपने आप हो जाएंगी।
हरे कृष्ण बाबू जी। बाबू जी, अगर किसी की गलतियों से या जो हम नहीं बता रहे उससे अपना खुद का ही नुकसान हो रहा हो तब क्या करें?
नहीं, आप, मैं पहले बताया आपको, एक बार उसको समझा तो सकते ही हो आप, पर आपको लगता है कि तब भी नहीं कर रहा तो धन क्या कर सकते हो आप?
प्रभु जी, अगर घर पे कोई बच्चे गलती,
प्रभु जी बता रहे थे टीना टीना होता है कि देयर इज नो ऑप्शन, टी आई एन ए टीना ऐसी है कि सॉरी देयर इज नो अल्टरनेटिव, टीना है मतलब अब इसका कोई विकल्प नहीं है। मान लीजिए मेरी पत्नी है या मेरे बच्चे मेरी बात मानते हैं, मैं क्या करूंगा फिर? प्रभुपाद जी की बच्चे थे, प्रभुपाद जी की पत्नी थी, प्रभुपाद जी की बात मानते नहीं थे तो प्रभुपाद जी उनके लिए थोड़े रुक गए वहां। अगर प्रभुपाद जी रुक गए होते तो हम सब यहां नहीं होते। हर व्यक्ति की का जो है वो अपने जीवन के मुक्ति का मार्ग स्वयं ढूंढता है वो व्यक्ति। हम उसको असिस्ट कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। कोई गुरु किसी को, आप समझ रहे हो, गुरु उसको मार्ग दिखाएगा। नेतृत्व का मतलब होता है, लीडरशिप का मतलब होता है रास्ता दिखाना, हुकूमत करना नहीं है। आप घर के लीडर हो तो आपको रास्ता दिखाने का वही है, हुकूमत उसके ऊपर कब्जा करके नहीं बैठोगे, तेरे को ऐसे करना ही पड़ेगा। और जो पति जो पत्नी या जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके घर में हमेशा क्लेश होता है, हुकूमत जो करना चाहता है। लीडरशिप का मतलब है कि आप रास्ता बता दीजिए कि प्रभु जी ये माता जी या प्रभु जी या वाइफ को ये ठीक नहीं, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये ठीक है, फिर भी नहीं मानते तो चुप रहिए। अब आप आपकी बारी है कि आप टॉलरेट करिए, यू हैव टू टॉलरेट, क्योंकि भगवान ने अब आपके लिए परिस्थिति उत्पन्न की है, आपके लिए यही तपस्या है कि आप उस व्यक्ति को टॉलरेट कर लो। ये है एक्चुअली
प्रभु जी, हमें किसी को फिर किसी के द्वेष बताना भी नहीं चाहिए अगर किसी की गलती हमें नजर आ रही
है। बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, भगवान से पूछता नहीं है तो। हमारे दुखी होने के 10 लक्षण है, मैंने एक बार शायद बताया था पता नहीं, तो दुखी कभी मौका मिलेगा तो मैं दुखी होने के 10 लक्षण बताऊंगा आपको। तो उसमें से एक लक्षण ये भी है कि हम बिना मतलब का एडवाइस देने जाते हैं लोगों को, अरे तू ही गलती करता है, व्हाट इज योर बिजनेस, आपका क्या मतलब है, उसका नुकसान हो रहा है, वो कर रहा है, आप कुछ परेशान हो रहे हो। आपको पता है कि एक बार क्या हुआ था कि मक्का में जो है एक बाप और बेटे जो है वो हज करने गए थे, तो जो बाप बेटे हैं वो जैसे नॉर्मली वहां भी सुबह जाके क्या कहते हैं, वो जाते हैं वो प्रेयर ऑफर करने के लिए, तो जो बाप बेटे थे वो 3:30 बजे उठ गए और उठ के जो है उस मक्का की तरफ जाने लगे, तो देखा कि बाप सारे रास्ते में बाप मोस्टली लोग सोए हुए हैं अभी, और ये दोनों जो है उस हज के उस मीनार की तरफ जा रहे हैं। तो उसका बेटा बोलता है, अरे पापा ये देखो ना सब सो रहे हैं। तो उसने अपने बाप बेटे को बहुत जोर से थप्पड़ मारा, मुंह पकड़ लिया, कह रहा चुप, इससे अच्छा जाके तू भी सो जा, बट ये बोल मत कि सब सो रहे हैं। समझ में आया आपको इसका मतलब, कि हमारा कोई मतलब नहीं है कि इसको बोलने का, हम खुद कर रहे हैं। मैं मंगल आरती, आप नहीं मंगल आरती आए, हम खुद कर रहे हैं, मैं मंगल आरती में, मैं तो सारे प्रोग्राम अटेंड करता हूं, आप इसका मतलब ये द्वेष, ये भी द्वेष का लक्षण है कि हम उसको नीच समझते हैं या हीन समझते हैं। ये सब नहीं करना है, बस इसका यकीन मानिए, भक्त का मतलब ये नहीं होता है। भक्त आप देखिए दीति और कश्यप के केस में गलती दीति की है, पर कश्यप ऋषि क्या कह रहे हैं, ये सारी गलती मेरी है कि मैं तुम्हारे इन्फ्लुएंस में आ गया था, मैं तुम्हारे प्रभाव में आ गया, अपनी गलती वो जो है सारी अपनी गलती मान रहे हैं, जबकि गलती किसकी है, दीति की, पर एक बार भी नहीं कहा उसको कि तुम्हारी गलती है। प्रहलाद का उपदेश देखिए, सब इसी के सब खारे करेक्टर इसी में है। प्रहलाद क्या कह रहे हैं, उसके पापा मारने को तैयार हैं, अब जब कभी आग के कुंड में फेंक रहे हैं, कभी सांप के उसमें कुएं में डाल रहे हैं, फिर भी एक बार कंप्लेन नहीं की कि आप मेरे को मारना क्यों चाहते हो पापा, एक बार भी कंप्लेन नहीं की। ये भक्त के लक्षण, कोई कंप्लेन नहीं, ठीक है। हरे कृष्णा, बहुत ज्यादा हो गया, श्रील प्रभुपाद की।